ओम शांति। अभी आपके सम्मुख राजयोगी बीके पुरुषोत्तम चौधरी जी हैं। आप भारतीय टेनिस डिफेंस में रॉकेट एवं मिसाइल इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। आप एक अच्छे एचआर ट्रेनर, योगाचार्य, मेमोरी एक्सपर्ट, मोटिवेटर और राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी हैं। साथ में आर्चरी और बिलियर्ड्स में सेंट्रल जोन से उन्होंने हिस्सा लिया है। आपने विभिन्न संस्थाओं और संगठनों में जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, पुलिस, डीएससी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जेल ऐसे अनेक संस्थानों में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हुए हैं। आपके जीवन में कला, साहित्य और आध्यात्म का सुंदर समन्वय है जो सभी को निरंतर प्रेरित करता है। आप कार्य योग, कर्म योग और ज्ञान योग की जीवंत मिसाल है। आपने लाखों किलोमीटर की यात्रा कर भारत सैनिक व अर्ध सैनिक बलों में जीवन जीने की कला सिखाई है। केवल मानसिक शक्तियों के द्वारा समस्त बीमारियों का जड़ से निवारण करने की अद्भुत कला सीखे और संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करे, ये इनका बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। साथ ही आज आपके जीवन में खुशियों भरी जिंदगी कैसे जी जाती है, आज आपके साथ वो शेयर करेंगे। ओम
शांति। गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। और सब श्रीलंका, अमेरिका, अफ्रीका सब ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? सबको विदेश जाने का बहुत इच्छा है शायद, इसलिए बिखरे हुए बैठे हैं। अगर आप थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाकर हम लोग और नजदीक हो जाएं, तो फीलिंग्स और अच्छा शेयर होगा। माउस दीजिए बैक। हाँ जी, जितना मन बिखरा होगा उतना अच्छा नहीं होगा। हम साइकोलॉजी के ऊपर भी आ रहे हैं। उस बिखराव के ऊपर एक छोटा सा प्रश्न। हम सभी के पास अपना अपने घर है, कोई किराए से होंगे, कोई अपना घर होगा, किसी का अपने पास प्लॉट्स होंगे, किसी के पास अपनी संपत्ति होगी। तो सर ने प्रश्न छेड़ दिया है, तो मैं एक छोटा सा सवाल आप सबसे पूछता हूं। हम सभी के पास जो भी प्रॉपर्टी है, कहां पर है, कौन से हिस्से में भारत के? एक आध हाथ उठा के बताएंगे। हरियाणा से। हरियाणा में सर के प्लॉट्स हैं और बंगलोज भी हैं। और सर पुणे, किसी का हिसार में, किसी का हरियाणा में, किसी का दिल्ली में, किसी का मुंबई में। फिर से सोचेंगे सर, गांधीनगर। फिर से सोचेंगे, हमारा जो बैंक बैलेंस है अलग अलग बैंकों में है, हमारा जो प्रॉपर्टी है शहर अलग अलग हिस्सों में है, वो वास्तव में हिसार में, हरियाणा में, पंजाब में नहीं है। ये दो कानों के बीच जो मस्तिष्क है, उसके अंदर जो आत्मा है, उसके अंदर मन है, वहां पे सब कुछ है। एक बार एक तपस्वी परमात्मा को ढूंढने के लिए जंगल में निकलते हैं, और निकलते निकलते कई दिन गुजर जाता है पर प्राप्ति नहीं होती है। वो चलते चलते एक शहर में आते हैं और वहां पे थके हारे किराना दुकान के सामने बैठ जाते हैं, जहां पर ग्रोसरी सेल वाला डब्बा के वो बिना देखे हाथ डाल के सामान निकाल के देता रहता है। इतना प्रैक्टिस हो चुका है उसको। बहुत सर देखने के बाद वो पूछते हैं, भाई साहब ये बताएंगे कि इस डब्बे में क्या है? वो कहते इसमें हल्दी है। खोल के दिखाते हैं, हल्दी है। इसमें क्या है? इसमें नमक है, इसमें अजवाइन है, इसमें फलाना है। करते करते आखिरी डब्बे तक पहुंचते हैं तो महाराज पूछते हैं, इसमें क्या है सर? वो बताते हैं, इसमें राम राम है। तो जैसे ही राम राम शब्द सुनते हैं तो फकीर की दिमाग की बत्ती जलता है। राम राम बोतल के अंदर, तो उत्सुकता बढ़ता है, तो उन पुनः पूछते हैं इसको खोल के दिखाइए, तो कहते इसमें राम राम है, दिखाऊं? खोलते हैं वो डब्बा खाली रहता है, तो आपने कहा तो राम राम है, तो उन्होंने कहा जो खाली होता है उसके अंदर ही राम बसता है। तब उसके दिमाग की बत्ती जलता है कि जो खाली होता है उसमें परमात्मा बसता है। हमने भरना बहुत अच्छे से सीख लिया है संसार में, जब से जी रहे हैं तब से भर रहे हैं, अब ये सेशन खाली करने का सीखेंगे, जो अनावश्यक चीजें हैं अनवांटेड लगेजेस उसको खाली करना सीखेंगे। जब हम फ्लाइट में आते हैं तो एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा रहता है, सफर को आसान बनाना हो तो सफर में सामान कम रखिए, जिंदगी को आसान बनाना हो तो दिल में अरमान कम रखिए। क्योंकि मैं मिसाइल फील्ड से हूं, मिसाइल डिजाइन करते हैं, तो कुछ शुरुआत आग से होती है, अंत भी आग से होता है। तो जब कहीं पर घनघोर रूप से आग लगता है, जब चारों तरफ डिजास्टर होता है, तब केवल व्यक्ति अपने को और अपनों को बचाने में तत्पर रहता है, चीजों को नहीं। पहले अपने आप को और अपनों को बचाता है, बाद में फोकस करता है कौन सा चीज बचाया जा सकता है कौन सा नहीं। तो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन यहां पर बैठे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत कारगर इसीलिए है क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर सबसे कीमती और अनमोल चीज होता है उसका स्पोर्ट्स आर्ट, जो टेक्निक जो कला जो स्किल उनके पास है, जो उन्होंने अपने आप से डेवलप किया है, वो उनकी असली प्रॉपर्टी है। तो जब आग लगती है, जब विषम परिस्थितियां आता है, जब किसी प्रकार का टेंशन आता है, बाहर के परिस्थितियां आपके सेटअप नहीं हो पाते, आपके कोपअप नहीं कर पाते, तब अगर आप राजयोगी हैं, अगर आप तपस्वी हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपका जो अनमोल चीज है स्पोर्ट्स आर्ट उसको बचाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होकर गए हैं जो नैराश्य की गर्त में चले गए, खेल छोड़ दिए। कारण क्या था? स्किल में कोई कमी नहीं थी, परिस्थिति चाहे सामाजिक आर्थिक किसी प्रकार का हो सकता है। तो हम बहुत अच्छे से इस सेशन को एंजॉय करेंगे, खाली करने का कला सीखेंगे, ठीक है। हम अपनी अपनी जगह पर एक बार खड़े हो जाएंगे सभी, और चूंकि शाम का समय है, इवनिंग वॉक का समय है, धीरे बोलिए, और इवनिंग वॉक का समय है, हम लोग एक वॉक करेंगे और आपकी जो असली प्रॉपर्टी है हम आपको बताएंगे, आपके पास आपकी असली प्रॉपर्टी क्या है। मेरे साथ आपको एक बस क्लैप करना है। आप कहेंगे क्लैप करना कौन सी बड़ी बात है, बस इस जो म्यूजिक बजेगा इस धुन पे हमको क्लैप करना है, ओके। धुन आप चेक करिए, सुनिए धुन, सभी करेंगे मिलकर।
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले, आजा आजा जिंदे शाम।
करते रहिए रुकना नहीं। आप जो बीट पकड़े उसको पकड़ते रहना है। बीट चेंज कराया, दिस इज योर प्रॉपर्टी। संसार में भारत में जो सबसे बड़ा रोबोट है उसका नाम है परम, परम एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें करोड़ों ब्रेन की भी ज्यादा पावर उसके अंदर समाई हुई है, परंतु वो बीट नहीं बदल सकता, वो एक सीढ़ी चढ़ नहीं सकता। एक ऐसा रोबोट जो धुन को पहचान नहीं सकता। क्या आपको पता है कि आपके मस्तिष्क के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा प्रकार के स्वाद को पहचानने की कला है? आपकी मस्तिष्क के अंदर 15 लाख से भी ज्यादा प्रकार की खुशबू को परखने की कला है। दीज आर द असली रोबोट्स एंड दीज आर द असली पीपल। आपके पास ये मैस्ट्री है, आपके पास ये शक्ति है। थैंक यू, बैठ जाइए। अगर आपको ठंडा रहना है तो बहुत अच्छा उपाय किसी ने निकाला है। बहुत खुशनुमा जीवन जीना है और बहुत गर्मी में ठंडी का एहसास करना है तो आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। कर सकते हैं, सबसे इजी उपाय, परंतु ये करने में थोड़ा सा समय लगेगा। आज हम अपने बारे में जानेंगे। जैसे सर ने कहा कि हमारी प्रॉपर्टीज और हमारी संपत्ति वास्तव में वहां नहीं है। कहां पर है? हमारे मस्तिष्क में है। और एक प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने लाखों की संपत्ति है। हम सभी जानते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई बचाते हैं कोई छुपाते हैं। एक प्रॉपर्टी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि आपके पास इतनी भारी प्रॉपर्टी है तो वो भी सोच में पड़ जाएगा। पता है आपके पास कितनी है? यह है 260 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू WHO 2012 हमारा जो क्लिनिकल वैल्यू है शरीर का, इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी कीमत है, ऐसे बोल रहे हैं सर जैसे कि बहुत चिल्लर है, 260 करोड़, और वो भी 212 में, और उसके ऊपर GST ऐड कर दीजिए, 2019 तक आ गया है। ओके, ये प्रॉपर्टी बहुत सुंदर हमको परमात्मा ने, प्रकृति ने और हमारे मम्मी पापा ने गिफ्ट किया है। हमें कोई हक नहीं बनता ये सुंदर प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की, परंतु हम क्या करते हैं, गलत खानपान, गलत दिनचर्या और गलत सोच के कारण हम दिन प्रतिदिन इस प्रॉपर्टी को डैमेज करते जा रहे हैं। हमारा शरीर शतायु है, 100 साल तक बिना रुके, बिना थके, बिना बीमार होके चलने वाली हमारी मशीन है। अगर 100 साल से पहले अगर हम बीमार होते हैं तो गलती किसकी है? हमारी स्वयं की गलती है। बड़ा हाथ तो हमारा एनवायरमेंट का बाद में है। तो आज हम जो जिस फील्ड को हम सुधार सकते हैं उसको सुधारेंगे। अगर हम स्ट्रेस को उल्टा कर दें तो क्या होगा? डेजर्ट, रेगिस्तान, जहां पर कोई आशा भी नहीं होता पानी की। एक सिंपल सा डेफिनेशन साइंस ने हमको ये बताया है, तनाव होता क्या है? कौन बताएंगे तनाव क्या होता है? सर बताइए। माइंड अपसेट हो जाता है। ये तनाव होने के बाद इफेक्ट्स हैं। तनाव के ही इफेक्ट्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं। तनाव चीज क्या होता है सर? ये तो कारण हो गया सर। ये कारण क्यों तनाव होता है? हम ढूंढ रहे हैं तनाव है क्या सर। मैम बोलिए जी। नेगेटिविटी के कारण भी तनाव होता है। हमको बहुत अच्छा एक डेफिनेशन साइंस ने दिया है कि तनाव होता क्या है, कि जो भी सिचुएशन हमारे चारों ओर आते हैं, ठीक है, और उसको सामना करने की मेरी क्षमता कितनी है, ये दोनों का कंपैरिजन ही तनाव है। अर्थात कोई भी सिचुएशन सबके लिए एक जैसा हो, परंतु तनाव सबके लिए अलग अलग होता है। मान के चलिए अगर हमको यहां से अहमदाबाद जाना हो, बस पकड़नी हो, ट्रेन का टाइम हो रहा हो और बस बीच में खराब होगी, तो सबको एक जैसा तनाव होगा? क्यों नहीं होगा? जबकि सिचुएशंस एक जैसे हैं, सबके न्यूरॉन्स एक जैसे हैं, हमारा ब्रेन का कंस्ट्रक्शन एक जैसे हैं, फिर भी तनाव अलग अलग क्यों होगा? सर यस, हमारा अंदर की शक्ति किसने कितना डेवलप किया है उसके आधार पर तनाव उनको कम या ज्यादा होगा। तनाव होने से इसका आउटपुट इफेक्ट क्या होगा? अपसेट होंगे और बीमारी आएगी। परमात्मा ने एक गलती कर दिया है। क्या गलती किया है? जैसे प्रेशर कुकर कैपेसिटी होता है, जैसे प्रेशर बढ़ा ऊपर से क्या होता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, आवाज करता रिलीज हो जाता है। अगर भगवान यहां पर आपको सिटी दे देता सबके ऊपर तो कैसा होता? तनाव आया और रिलीज हो गया। परंतु फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो सिटी उल्टी लगी हुई है। जैसे ही तनाव होता है तो वो सिटी अंदर की ओर खुलता है। अंदर की ओर खुलने से हमारे अंदर से ये नॉक करके बताता है टक 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 कि यहां पर दर्द है, मतलब आपके अंदर तनाव आ रहा है, आपको कुछ अभी परिवर्तन करना पड़ेगा, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, विचार परिवर्तन करना पड़ेगा, भोजन करना परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि संबंध तो परिवर्तन नहीं कर सकते, सिचुएशंस को परिवर्तन नहीं कर सकते, जो चीज मेरे हाथ में उसे परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी बीमारियां साइंस हमें बताता है। एक छोटा सा फिनोमिनन ये होता है कि जैसे तनाव हमारे मस्तिष्क के अंदर आत्मा में विचारों में आता है तो तुरंत हमारा किडनी के ऊपर दो एड्रिनल पंप है छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन पंप करते हैं। और जैसे स्ट्रेस हार्मोन पंप होता है तो शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगता है। और जैसे ये इसको कहा जाता है एड्रिनल, जैसे एड्रिनल बढ़ता है तो हमारा हाथ कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को सबसे ज्यादा खून की जरूरत पड़ता है, क्योंकि तनाव होने से पहले कौन सा चीज गर्म होता है? ब्रेन गर्म होता है। तो ब्रेन को ज्यादा खून पहुंचने के कारण हाथ पैर कांपने लगते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाता है। तो हमारा शरीर एक सुंदर कार के समान है। मान लीजिए हमने अपने कार को कई सालों से चलाया है, ड्राइविंग आता है, जंगल में कार खराब हो गई और छोटी सी डिफेक्ट है, हम क्या करेंगे? अगर कार की कोई भी मेंटेनेंस नहीं आती हो हम क्या करेंगे? जब तक कोई मैकेनिक नहीं आ जाता तब तक हमको वहीं पर वेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा कार है, इस कार को हमने 40 साल से 50 साल से 100 साल से कैरी करते हैं, परंतु इसमें अगर कोई भी डिफेक्ट हो जाए तो हमको किसके पास जाना पड़ता है? मैकेनिक के पास। तो शरीर का मैकेनिक तो ठीक है, परंतु मन का मैकेनिक कोई है? ऐसे कोई साइकोलॉजिस्ट है संसार में जिनको तनाव नहीं होता हो? है? यस और नो? तो इसलिए इसकी मैकेनिज्म हम समझेंगे और इसको हम सही तरह से ठीक करेंगे। एक वीडियो, असली फोन बज रहा है।
हेलो, हाँ अच्छा ठीक है, पैसे लगनी है।
मेरा नाम है करीमुल भाई, एम्बुलेंस करीमुल उल्लख जी का, जिनकी मासिक आय 3000 से भी कम है, चेहरा देखने में बहुत सुंदर नहीं है, अमीर नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, उनकी माताजी की मृत्यु इसलिए हो गया क्योंकि शहर उन काफी दूर था गांव से और जब वो बीमार हुए तो शहर तक नहीं जा पाए। तो ऐसी सिचुएशन में एक व्यक्ति क्या कर सकता है और इन्होंने क्या किया?
इनसे मरीजों को हॉस्पिटल ले जाता हूं। मेरी जो माँ है ना, रात 2 बजे बिना ट्रीटमेंट के उनका मौत हो गया।
वो दुख है मुझे। और कोई गांव का माताजी हो, बच्चा हो, बिना लिस्ट से ना मरे,
तुरंत कैसे हॉस्पिटल पहुंचाओ, बस यही चिंता में रहता था। तब एक दिन चाय बागान में एक आदमी काम करते करते गिर गया, मैंने तुरंत मोटरसाइकिल निकाला। उस दिन से मेरे दिमाग खुल गया, ये छोटे से एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस का काम कर सकता है। रोड भी खराब है गांव पे, कभी कभी नदी होता है, नाला होता है, छोटा छोटा रोड, बाइक एम्बुलेंस वहाँ पे बहुत काम आता है। कोई कोई गांव गांव में हंसने लगा, ये कैसे एम्बुलेंस हुआ भाई। फिर जो मरीजों को मोटरसाइकिल में बैठा के ले जाता हूँ, लोगों ने बोलता है बहुत अच्छा काम है ये।
अभी कर्मी लोग सबको इंस्पिरेशन हो गया क्रांति का, कोई किसी का प्रॉब्लम है, कोई ऑपरेशन की जरूरत है, कर्मी लोग को बोलने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
24 घंटा मोबाइल ऑन रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट ले गया हम अस्पताल पे, 3000 से ऊपर ले गया, बुढ़ा से तब बच्चा तो कम से कम 10-15 गांव का आदमी को ले जाता है।
कोई विपद में पड़ने से दौड़ के चलाता है, हम लोग को बहुत उपकार होता है।
इस एरिया के लिए तो मुझे भगवान समान है,
तो जान बचाए हमको बोलता है कि तुम भगवान है, हमने भगवान हम नहीं, भगवान दूसरा है, हम इंसान है। जब 2-4 पेशेंट एक साथ आ जाते हैं, सबको तो हम नहीं ले जा सकता है ना, तब बहुत दुख होता है।
एक कंपनी ने उनको एक गाड़ी मैन्युफैक्चर करके दिया है, जब उस गाड़ी को स्पर्श करते हैं तो उनके इमोशंस देखिए।
ये तो मेरे अभी नशे से माँ चलाया मेरे, बहुत गरीबों का जान बचेगी, बहुत इंसानों का जान बचेगी। हम जब तक मेरे जान है रहेगा, एक एक जिंदगी हम बचा दूंगा।
जो अपने मजबूत इरादों से कुछ बड़ा कर जाते हैं, हर रोज हमें गर्व का एहसास कराते हैं।
जब तक मेरी जान है, जब तक आखिरी सांस बचाए, मैं एक एक जान बचाऊंगा। 3000 लोगों के जीवन को बचाने वाले कर्मफुल उल्लक, 3000 उनकी पगार। जलपाईगुड़ी में रहने वाले, जिसमें से 2000 अपनी पत्नी को देते हैं और 1000 गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए लगाते हैं, पेट्रोल के लिए खर्चा करते हैं, किसी से पेट्रोल का पैसा भी नहीं लेते। उन्होंने भगवान को कोसा नहीं कि मेरी मम्मी की मृत्यु क्यों हो गई, सरकार को नहीं कोसा, अपने भाग्य को नहीं कोसा, परंतु उन्होंने उसका रास्ता अपनाया कि जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को स्ट्रांग करते हुए ऐसा कार्य करके दिखाया कि 2018 में विराट कोहली 300 करोड़ संपत्ति का ब्रांड, उनके साथ खड़े होकर राष्ट्रपति जी से उनसे पुरस्कार लिए। एक गांव का व्यक्ति, ना कोई सपोर्ट, ना कोई कोच, ना किसी प्रकार का उनको आर्थिक सहयोग। तो ये होता है जज्बा। अगर जीना है तो खुशहाल जीना है, सबके लिए जीना है। ये आपके सामने माउंट एवरेस्ट का एक पिक्चर है। आठ किलोमीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट, 1953 29th में एडमंड हिलरी वॉज द फर्स्ट मैन हु क्लाइम्ड ओवर माउंटेन माउंट एवरेस्ट। उनके अंदर विचार आया कि संसार के सबसे उच्चतम चोटी पर मानवता का पहला कदम क्यों नहीं रखा जाए। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, आठ बार प्रयत्न किए, परंतु जब भी वो प्रयत्न करते थे एक एक रिकॉर्ड कायम करते थे, क्योंकि उनका हर एक कदम सबसे ऊंचा हुआ करता था। तो जब आठ बार वो हिमालय तक नहीं पहुंच पाए, फिर भी अपने अपने रिकॉर्ड होल्डर थे, तो एक सेमिनार हॉल में पहुंचे, उनके सामने हिमालय का बहुत बड़ा फोटो था। उन्होंने हिमालय से बातें की। अक्सर करके हम बातें करना भूल जाते हैं, अक्सर करके हम परिस्थितियों से, समस्याओं से बात नहीं करते, अक्सर हम उनसे बात करते हैं जो परिस्थितियों के बाहर होते हैं। एक साइंटिस्ट बात करता है अपने इंस्ट्रूमेंट से, एक कवि बात करता है अपने कलम से, और एक खिलाड़ी बात करता है। बोलिए, आप खिलाड़ी, आप बताएंगे किससे? यस, ये आपका शरीर का अभिन्न अंग बन जाता है। तो उन्होंने बात किया हिमालय से, ओ हिमालय यू हैव ग्रोन एज मच एज यू कैन। ओ हिमालय, आपको जितना बढ़ना था बढ़ गए, परंतु मैं अपने स्पिरिट से रोज बढ़ रहा हूं। आई एम स्टिल ग्रोइंग इन माई स्पिरिट। मैं बढ़ रहा हूं, तुम नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा फिक्स हो चुका है, मैं बढ़ सकता हूं। और यही जज्बात लेके उन्होंने जब 9th टाइम ट्राई किया, तो 29 मई 1953 में उन्होंने मानवता का पहला झंडा हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर फहराया। और वहां से लौट के उसी सेमिनार हॉल में जब पहुंचे, तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा आकर उनको पूछता है, अंकल एक सवाल पूछूं? तो कहते हैं, हाँ बेटा पूछिए, अब आप पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। तो उन्होंने पूछा, छोटा से बच्चे ने उनको पूछा कि सर व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट चैलेंज फॉर यू, सबसे बड़ा कठिन चुनौती आपके लिए क्या था? तो उन्होंने कहा -40 डिग्री सेंटीग्रेड, हड्डियों को पिघला देने वाली सर्दी मेरे लिए सबसे बड़ी कठिन चुनौती नहीं थी। जो हमारे लिए माइनस तो छोड़िए 10 डिग्री 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाते तो हम सारे काम छोड़ देते हैं। दूध लाने के लिए अगर बोलती है तो रहने दो, बोलते हैं आज काली चाय पी लेंगे। पर उस समय -40 डिग्री सेंटीग्रेड में उस समय ऐसे कोट्स भी नहीं बनते थे कि उसको रजिस्टर कर सके, परंतु आंतरिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था उसके अगेंस्ट में। तो उन्होंने कहा 25 किलो का बैग लेके अप द हिल एक एक इंच ऊपर चढ़ना, ऊपर का वायुमंडल कुछ पता नहीं है परंतु नीचे मृत्यु सुनिश्चित है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी कठिन चुनौती, जोर से बोलेंगे, नहीं थी। कोई जीपीएस नहीं था, कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं था, कोई मैप नहीं था, पहले से कोई गया हुआ नहीं था, कोई रस्सी नहीं डाली हुई थी, कोई लाइफ सेविंग मैकेनिज्म नहीं था, फिर भी चढ़ना ये मेरे लिए सबसे बड़ी कठिन चुनौती नहीं थी। उन्होंने कहा सबसे बड़ी कठिन चुनौती मेरे लिए ये था, 1000 बिलियन डॉलर की बात उन्होंने कही गई संसार के लिए, एक ऐसा शब्द जो हर एक मनुष्य को प्रेरणा देता है आज तक। उन्होंने कहा सबसे बड़ी कठिन चुनौती मेरे लिए ये था, थोड़ा अपने अपने दिल पे हाथ रखेंगे, अपने अपने समस्याओं को सामने रख के, सबसे बड़ी कठिन चुनौती मेरे लिए ये था कि मैं अपने दिल को मना सकूं कि यस आई कैन डू इट। ताली जोर से बजा सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज हमारे डॉक्टर बलराम भाई ने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसको हम और प्रैक्टिकल करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम अपनी समस्याओं को अगर छोटा करना चाहते हैं तो हमें उससे भी बड़ा बनना पड़ेगा। तो उससे बड़ा बनने के लिए आज हम अपनी समस्या को, जो रियल समस्या है आपकी, जो रियल समस्या है आप उसको हिमालय के चोटी पर देखेंगे। इसको कहा जाता है साइको न्यूरोटिक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज करते करते हम सच में अपने अंदर की एफिशिएंसी को, कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को एनहांस करते हैं। सब करेंगे, सब कमर गर्दन सीधी अपनी चेयर में एकदम अलर्ट, और रियल में अपने समस्याओं को इस हिमालय पर्वत के ऊपर देखेंगे। ये 8848.8 मीटर की ऊंचाई पर आपकी समस्या है, जो साधारण तो लोगों को लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। एक छोटी सी कहानी इससे पहले, एक रेस हो रहा था, एक रेस का आखिरी छोर था एक टावर के ऊपर, और रेस में पार्टिसिपेंट्स थे बहुत सारे मेंढक, और अच्छे अच्छे मेंढक, कसरत करने वाले मेंढक, मैराथन दौड़ने वाले मेंढक, अच्छे खिलाड़ी मेंढक भी थे। और वहां से एक छोटा सा नन्ना सा पिल्लू सा मेंढक आ गया, बोला मैं भी भाग लूंगा। तो वहां पर जो अरेंजमेंट करने वाले थे उन्होंने कहा नहीं तेरा नंबर नहीं लगेगा, तू अंडर वेट है, निकल जा। तो उसने कहा नहीं सर मैं करने दो मैं कर लूंगा। तो ठीक है बोलते, थोड़ी देर दौड़ के निकल ही जाएगा, दौड़ने दो। तो सिटी बसता है और रेस चालू होता है, तो सभी दौड़ते हैं, सब अपनी अपनी पूरी ताकत लगा के आधे तक पहुंच जाते हैं, परंतु छोटू टुक 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 करके आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते आधे से भी ज्यादा पहुंच जाता है। अब देखते हैं लोग चारों ओर से यू कैन डू इट आप जैसे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हैं, चारों तरफ से आवाज आ रही है, मस्त ऐसे वातावरण बन गया है कि जैसे कि ओलंपिक रेस चल रहा है, सब मेंढक चिल्ला रहे हैं, ऑडियंस भी मेंढक ही होंगे ना, तो सब अपने अपने आवाज से चिल्ला रहे हैं, सबकी वॉइस अलग अलग होती है, राग अलग अलग होता है, सबकी ताना अलग अलग होता है, ठुमरी कोई दादरा कहरवा अलग अलग। तो थोड़ी देर बाद क्या देखा जाता है कि सब जो बड़े बड़े रेस करने वाले पार्टिसिपेंट्स थे उनकी गति स्लो होती जा रही है, कोई रुक भी गए, परंतु ये जो छोटा भाई था ये बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा है विद द सेम फ्रिक्वेंसी, और बढ़ते बढ़ते टावर पे चढ़ने लगा। कुछ लोग आधे तक टावर में चढ़े और रुक गए, परंतु ये पूरा टॉप में पहुंच गया और टॉप में जाके सबको वेव कर रहा है कि चलो मैं जीत गया, सब खुश हो रहे हैं। नीचे उतरे तब उनको इंटरव्यू वाले रवि शास्त्री जी से आते हैं ना पूछने के लिए, तो उनका जो मेंढक वाला होगा कोई पुराना कोच जो सीनियर खिलाड़ी वाके पूछते हैं कि मास्टर जी आप तो बहुत अच्छे कर लिए, क्या आपके अंदर जज्बा था, आपके अंदर क्या जुनून था? तो उन्होंने कहा बस मेरे अंदर कोई जुनून नहीं था, वो जो लोगों का जो प्रोत्साहन था ये मेरे को एनर्जाइज कर रहा था, ये मेरे अंदर के एंथुसिएज्म को बढ़ा रहा था और मैं आगे बढ़ता जा रहा था, और इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा ये सारे ऑडियंस को, ये ऑडियंस के जीत है मेरा जीत नहीं है। तो जो है ना सामने एडिटर रहते हैं उनको पूछते हैं कि पता आपको लोगों ये लोग क्या बोल रहे थे सब? नहीं बोले मैं तो कुछ मुझे कुछ विशेष सुनाई नहीं देता, मुझे कोई नजदीक आके बोलता है तो मुझे सुनाई देता है, मैं थोड़ा बहरा हूं, मुझे बोल लोग तो एनहांस ही करेंगे ना, हाथ उठा के ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो सारे लोग बोल रहे थे अरे कोई जीत नहीं सकता, तुम तो बेकार हो, तुम तो बुद्धू हो, तुम तो नकारा हो, तुम तो कुलांगार हो, तेरे अंदर कोई कैपेसिटी नहीं, ऐसे चिल्ला रहे थे लोग। और जो सुन लिए उन लोगों को उनकी रेस क्या हो गई, स्लो हो गई, क्योंकि कान से बह रहा था इसलिए उस टॉप में पहुंच गया। सुबह सुबह उठ के हम लोग रोज दुकान खोलते हैं, ठीक है, हमारे पास दुकान है सर, मैम आपके पास दुकान है, आपके पास है सर दुकान, कहां पे? दिल्ली में शक्कर की दुकान है। नहीं सर उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम हर कोई सवेरे उठकर दुकान दो कान खोलते हैं, और ये जो दो कान होता है ना वंडरफुली इसकी डिजाइन भी देखिए वॉश बेसिन की तरह होता है, पूरा गोल बीच में एक छेद है, सारी आप वॉश करेंगे हाथ पैर जितनी मैला डाल दो सब अंदर चली जाएगी। ये डिजाइन वैसी की गई है कि ये तुरंत नेगेटिव बातों को कैच कर लेता है, ठीक है, और अंदर चला जाता है। तो आज हम सब चीजों से परे अपने मन को कमांड देंगे कि ये मेरी परिस्थिति है, ये मेरा लक्ष्य है, ये परिस्थिति हिमालय है उसके ऊपर मेरा विजय है, लक्ष्य है, तो मुझे अभी 2 मिनट के अंदर उस लक्ष्य को पहुंचना है। चलिए अब सब आंखें बंद करेंगे, हिमालय को देख लिए, अब अपने मन की आंखों से हिमालय रूपी परिस्थिति को आपको जीतना है। तो आपके अंदर कितनी कैपेसिटी अभी होनी चाहिए, मन की शक्ति कितनी जागृत होनी चाहिए, आपको एक वर्दी पहना दिया गया है, भारतीय सेना की वर्दी, आप अभी खिलाड़ी नहीं हो, आप अभी सेना के अधिकारी हो, और ये परिस्थिति आपका दुश्मन है, उसके ऊपर आपका विजय है। अब सब संसार में कह रहे हैं कि आप ये कर नहीं सकते, अपने पैरों में आपने सेना की पावरफुल शूज पहना है, आपने पूरे शरीर में
यही रास्ता है
एमिनेशंस एंड वेपन्स लेके
अब जाना है
एक छोटी सी पगडंडी पे चलना चालू करते हैं
यही सपना है
वहाँ कोई रास्ता नहीं है
तूने पहचाना है
जहाँ से आपको आगे बढ़ना है अपने राइट हैंड को टाइट करेंगे कमर गर्दन सीधी परिस्थिति आपको सम्मुख दिखाई दे रहा है
यही रास्ता है
आप चलना चालू करते हैं चलते चलते अब आपके कदम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं जहां किसी ने रास्ता पहले नहीं बनाया था आप अकेले हैं पूरे संसार आपको मना कर रहा है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते ये तो असंभव है
अशक्ति
आप ऊपर और चढ़ते जा रहे हैं और ऊपर चढ़ते हुए लक्ष्य के ऊपर पहुंचकर आप ने अपने विजय का झंडा फहरा रहे हैं और पूरे संसार को कह रहे हैं यस आई कैन डू इट राइट हैंड को टाइट करके सभी बोलेंगे यस आई कैन डू इट आंखें बंद करके वहीं पर आपको डटे रहना है तनाव तो छोटी चीज है आपको तो संसार को विजय प्राप्त करना है पूरी संसार अभी आपको देख रहा है
मुश्किल कोई
सैल्यूट कर रहा
आ जाए तो पर्वत कोई
आप
टकराए तो
एग्जाम्पल बन गए
ताकत कोई दिखलाए तो
सबको बता रहे हैं कि असंभव कुछ भी नहीं
मंडलाए तो मुश्किल कोई
अभी दोनों हाथ ऊपर करके विजय के कोर्ट में सबको बता रहे हैं यस यू कैन डू इट सबको मैसेज दे रहे हैं यस यू कैन डू इट वही पोजीशन, वही स्थिति वही मन के अंदर की उमंग उत्साह लेके हम पहाड़ के ऊपर से जो पहले हिमालय जैसे प्रतीत होता था दो मिनट पहले अपने मन की शक्ति से आप उसको विजय प्राप्त किए हैं इसलिए आप सबको मैं भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से और पर्सनली मेरे तरफ से सलाम करता हूँ यू आर द विनर अभी बात यह है कि आप सब विजय बैठे हैं सब विनर बैठे हैं जब एक विनर दूसरे विनर से मिलता है तो हाथ मिला के उसको बधाई देता है कॉन्ग्रेचुलेट करता है आप एक दूसरे को बहुत जल्दी कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए और आपने आपको बोलिए आई एम द विनर आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई बोलिए सर मैं आपसे मिलूंगा आइए सर आई एम द विनर आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई
थैंक यू
आप भी बोलिए सर
आई एम द विनर आई एम वेरी हैप्पी मीटिंग यू हियर
थैंक यू सर अभ्यास इतनी खामोशी से कीजिए अभ्यास इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचाए एक अर्जुन जिसके पास सब कुछ गैजेट्स था कोच था सब कुछ था और एक जिसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी विनर बना परंतु आज महाभारत की उस सीनरी को अगर हम सामने लाएंगे तो वहां पर एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा सिद्धांत हमारे सामने आता है एक रणभूमि एक युद्ध क्षेत्र में एक तरफ पांडव एक तरफ कौरव द लेजेंड महाभारत आपने सुना है वहां पर विजय किसकी हुई पांडव की विजय हुई क्यों क्योंकि उनके साथ भगवान कृष्ण लड़ नहीं रहे थे केवल साथ का बल था तो Yes, he was a good coach. खुद नहीं लड़े, लड़ना सिखाया. तो जिसको लड़ना सिखाया वो कौन है पता है? वो भी यहां पर है. और जिनके साथ लड़ना सिखाया वो कौन है? वो भी यहां पर है. कहां पर है? कहां पर है? इस कर्म क्षेत्र के अंदर परमात्मा जो निराकार है इस समय आके हमें सिखा रहा है. आकर्ष इति तक कृष्ण, अर्थात परमात्मा जो सबको आकर्षित करता है, इस समय ये सिखा रहा है कि युद्ध भूमि में सदा स्थिर रहना सीखो. इसलिए युधिष्ठिर नाम रखा गया. जो ज्ञान को सही रीति अर्जन करता है वो अर्जुन कहलाता है. जिसके अंदर शक्ति हो, सामर्थ्य हो, डर थोड़ा सा भी ना हो, भीम कहलाता है. जिसके अंदर कोई भी कुल नहीं हो, खिलाड़ी का कोई जाति कोई कुल नहीं होता, आत्मा का भी कोई कुल कोई जाति नहीं होता, वो नकुल कहलाता है. और जो सदा देव के सहित रहता हो, अर्थात जिसके विचार सदा पॉजिटिव हो, जिसके अंदर देवत्व हो, वो सहदेव कहलाता है. ये भी मेरे अंदर के वृत्तियां हैं. और ये वृत्तियां बहुत कम मात्रा में है. एक हिंदी में शब्द होता है जिसमें कोई मात्रा नहीं है, वो है अकड़. परंतु हर व्यक्ति के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर होती है. इसीलिए दूसरे पार्टी भी सामने खड़ी है, वो है उनको लीड करने वाला दुर्योधन. दुर्योधन अर्थात कोई व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व है. दुर्योधन अर्थात जो धन का दुरुपयोग करने वाला हो. दुशासन अर्थात शासन एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग करने वाला हो. ये भी मेरी नेगेटिव प्रवृत्तियां हैं, मेरी आंतरिक नेगेटिव शक्तियां हैं. फिर दुराचार, दुष्टाचार, दुर्विक्ष, दुर्मुह, ये किसी व्यक्ति के नाम नहीं है. ये हमारे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा इसके पसारा फैला हुआ है. और उनको जीत पाने के लिए 14 साल का छोटा सा बच्चा चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करता है. वो कौन है? कहां पर है? अभिमन्यु का अर्थ होता है अभी अभी, मन को न्यू न्यू बातें चाहिए. तो आज के जो बच्चे हैं, जो सीखने वाले हैं, वो उनको चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है. चक्रव्यूह अर्थात एक संसार में बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, इंटरनेट कहेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब. अभिमन्यु, अभिमन्यु का अगर हम सेग्रीगेट करेंगे, अभी अभी मन को न्यू न्यू बातें चाहिए. आज के बच्चों को देख लीजिए, जो छोटे बच्चे हैं, कोई एक चीज उनका पसंद नहीं आएगा तुरंत. मन एक बच्चा है, शरीर भरे बड़ा है, परंतु मन एक 14 साल वाला छोटा सा बच्चा है जो उसको हर पल नई नई बातें चाहिए. और हमारी जिंदगी की तलाश ही यही है कि हम हर वक्त नया क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि मन को खुशी चाहिए, मन को आनंद चाहिए. हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का? हम कितने भी साल के हो जाओ, कितने भी करोड़ संपत्ति कमा लियो, कितने भी स्टेटस कमा लिया हो, परंतु उसके पीछे का जो लक्ष्य रहता है जीवन में, क्या चाहिए? सुख चाहिए और आनंद चाहिए. तो क्या हमें प्राप्त हो गई? क्वेश्चन है ये, क्या हमें परमानेंट सुख प्राप्ति हुई? नहीं हुई. मतलब अभी भी तलाश जारी है. ठीक है, तलाश जारी है सुख की. और हम ला रहे हैं एंड्रॉयड 1.4 वर्जन मोबाइल. हमें लगता है कि इसमें से हमें सुख मिलेगा. ठीक है, परंतु लिस्ट इतनी ज्यादा है, इसलिए मंदिर में बैठे हुए, गिरजाघर में या गुरुद्वारा में जब बैठते हैं तो 5 मिनट के लिए भी मन स्थिर नहीं होता, मन टिका हुआ नहीं होता. क्यों? क्योंकि लिस्ट पड़ी है मन के अंदर. जब तक लिस्ट पूरा नहीं होगा तब तक मन टिकेगा नहीं. हम इतने शांति वन में, इतनी बहुत शांति की जगह में आए हैं, तो आपका अभी मन कैसा है? शांत है. यही चीज दिखाने के लिए आपको लाया गया है. यहाँ पर जो मॉडल्स बनाए गए हैं, हमारे जो भाई और बहन यहाँ पर रहते हैं, उनके चेहरों को आप देखिए. उनके पॉकेट में हाथ डालेंगे तो 1 रुपया भी नहीं निकलेगा, 1 रुमाल जरूर निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा. उनके हाथ में अंगूठी, गले में चेन नहीं है, परंतु होठों पे सदा मुस्कान. हमारे ऐसे डेडिकेटेड भाई बहनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए. एक व्यक्ति जब उसकी पत्नी को एक पहाड़ ने रोक लिया रास्ता, तो उसने पहाड़ से दुश्मनी की और उसका नाम है दशरथ मांझी।
भरम
पहाड़ से बातें करने लगा,
देख देख कैसे उखाड़ते हैं अगर तेरी वो मेरी जिंदगी को खराब किया।
पहले उसने अपने आप को श्रेष्ठ किया, दुश्मन के साथ लड़ा, क्योंकि वो पहाड़ हॉस्पिटल और उसके घर के बीच बहुत बड़ा रोड़ा था।
सब राज्य खुश है।
बाद में उसने अपना
बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत जोर है। अरे भरम है भरम, देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी मेरी जिंदगी को खराब किया। हम
क्रोध करने से केवल अग्नि उत्पन्न होता है,
खत्म
ना उसका भला होता है ना सामने वाले का भला होता है।
सब राज्य खुश है।
फिर उसने अपने मन की स्थिति को बदला, जिस पहाड़ से दुश्मनी थी उसने उसके साथ दोस्ती की और उसके पुत्र सब राजी खुशी।
गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे,
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक साधारण सा मनुष्य छिन्नी हथौड़े लिए चल दिया पहाड़ को तोड़ने के लिए।
यार है,
ये सत्य कथा है आपके सामने।
कैसे हैं?
शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
ऐसी परिस्थिति में भी कहता है शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद।
जबरदस्त, जिंदाबाद।
अच्छा एक बात बताइए, ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है?
भाई अपना अपना हुनर है, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं।
और इतना ताकत कहाँ से लाते हैं?
ये प्रेम है,
ये प्रेम है।
पहले अपने जोरों से था,
पहले अपनी पत्नी से था,
अभी पहाड़ से है,
अपने खेल से है।
इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। पर एक हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए, अपने आप से घिन आता है।
तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं?
अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या?
पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या?
पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या?
बड़ी जाति हो गई भैया।
बिना टिकट के कारण टीटी ने उनको ट्रेन से धक्का दे दिया।
चाय पियो।
कौन बात नहीं, जाएंगे दिल्ली पैदल।
पैदल
घूम गया है का?
तो
अरे 1300 किलोमीटर है।
1300 किलोमीटर
आया है जे, पैरे से नाप दीजिएगा।
जाना तो है ही है, जाएंगे जरूर।
शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब एक हाथ बढ़ता है तो पांच हाथ जरूर लगते हैं। और एक समय ऐसा आया,
छेनी हथौड़ी से पूरा पूरा पहाड़ तोड़ दिए,
पूरा पहाड़ उस व्यक्ति ने तोड़ के दिखाया।
इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप?
हम तो ठेपा मार, तो हम क्या कहेंगे भैया?
कुछ तो कहिए।
हम तो यही कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, कहा पाता भगवान हमरे भरोसे बैठाओ।
भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता यही भगवान माउंट आबू पर्वत पर आपके भरोसे बैठा था। इतने दिनों से आपको निहार रहा था कि ये मेरे बच्चे, मेरे लायक बच्चे, जो पहाड़ को तोड़ने वाले बच्चे, कब माउंट आबू के धरती पर ज्ञान सरोवर में आएंगे और मेरा बचा हुआ काम इस कलयुग संसार को, दुखमय संसार को सतयुग संसार में परिवर्तन करेंगे। ये आप अपनी मर्जी से नहीं, ये भगवान की अर्जी से आए हैं। भगवान अर्ज डाला था कि ये मेरे बच्चे छुपे हुए हैं। तो एक बहुत सुंदर सा मंत्र जीवन जीने का और सफलता प्राप्त करने का और सुखमय रहने का, द लाइफ इज इन बिटवीन बी टू डी, बी इज इक्वल टू बर्थ, ब्लड प्रेशर नहीं है, और डी मतलब डायबिटीज नहीं है, डी का अर्थ होता है डेथ और सी का होता है कंप्लेन, ठीक है। मुझे ही ऐसी पत्नी क्यों मिली, मुझे ही ऐसा पति क्यों मिला, मुझे ऐसा कोच क्यों मिला, मुझे ही ऐसा घर क्यों मिला, वो अब्दुल करीमुल हुलक उलहक कंप्लेन नहीं किए, क्रिटिसाइज नहीं किए, क्रैम्प नहीं किए, किसी से क्वारल नहीं किए, उन्होंने अपने जीवन का चॉइस, अपना रास्ता खुद बनाया। एक मिट्टी के घड़े से किसी ने पूछा कि आप इतनी गर्मी में ठंडे कैसे रह सकते हो, तो मिट्टी के घड़े ने कहा, मेरा आदि भी मिट्टी, अंत भी मिट्टी, तो गर्मी कहेगा। मुझे बड़ा, मैं खुश नसीब हूं कि मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के साथ काम करने का मौका मिला। उनका एक वाक्य मेरे ध्यान में सदा घूमता रहता है, वो कहते थे कि काला रंग भावनात्मक रूप से बुरा हो सकता है, परंतु एक ब्लैक बोर्ड एक विद्यार्थी के जीवन को सदा ब्राइट करता है। अर्थात हमारे जीवन में जो भी काले पन्ने आएंगे, हमें उसमें उसको ब्लैक बोर्ड बना देना है और अपने लक्ष्य को उस पर आंक लेना है और जीवन को सदा सफल बनाना है। इसलिए एक कवि ने बहुत सुंदर वाक्य कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। बस घबरा के उदास हो के कभी बैठ नहीं जाओ यारो, जिंदगी भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो कुछ नेगेटिव बातें जो हमारे मन को खुश नहीं रखते, क्वेश्चन ये है, संसार में आज तक जितने लोग होके गए, क्या खुश होके गए, संतुष्ट होके गए, क्या उनकी लिस्ट पूरी हो गई? सोच जोर से बताइए, यस और नो। आपका क्या इरादा है? किसी ने बोला पूरी करके हाथ उठाएंगे। आपका क्या इरादा है? यहां आके लिस्ट खत्म होगी और जैसे घर जाएंगे तो उसका, अगर आप घर जाके अपने नजदीक सेंटर में रोज आधा घंटा समय निकाल पाएंगे, तब कहेंगे कि आपकी लिस्ट पूरी हुई, अदरवाइज वहां पर काम की लिस्ट चालू हो जाएगा। हमारा मन, संसार में सबसे बड़ी दूरी कौन सी पता है? 14 इंच की दूरी सबसे बड़ी है। जिसने इस 14 इंच की दूरी को तय कर लिया, संसार में सबसे बड़ी मैराथन उसने जीत लिया। और ये 14 इंच की दूरी है हमारा दिल और दिमाग, ये 14 इंच की दूरी। ये दिल हमेशा छोटा बच्चे की तरह है, अच्छी बात ढूंढने की कोशिश करता है, परंतु दिमाग लॉजिक लगा के बताता है, मैं बिना कारण के मुस्कुराऊं, अभी भी कुछ बैठे हैं पीछे बंदूक लगा के, मैं डिफेंस से हूं इसलिए मैं बंदूक की भाषा बोलूंगा। हमारे दोस्त हैं बलवीर सिंह साहब, सर थोड़ा खड़े होंगे इनके लिए, ये इंटरनेशनल कोच और जज है बॉडी बिल्डिंग का। सदा मुस्कुराते हैं, शरीर फौलादी और मुस्कुराहट देखिए, सदा शांत से मुस्कुराते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो लोग चले गए थे उनका प्लानिंग क्या था? लिस्ट पूरा करके जाने का था कि नहीं था? फिर भी नहीं हो पाया, तो हम गलत ट्रेन पकड़े हैं, गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर जीवन में अल्टीमेट खुशी चाहिए तो हमें खुशी के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा और खुशी होकर प्रयत्न करना पड़ेगा। एक पिछले साल की एक न्यूज है, IIM बेंगलोर में एक लड़की सुइसाइड कर दी। जब रिसर्चर्स उनके टीम गई, उनकी कमरा खोला, तो उन्होंने दीवार के ऊपर 10 माइलस्टोन लिख के रखे थे। द फर्स्ट माइलस्टोन इज दैट आई नीड टू गेट IIM बेंगलोर, मुझे IIM बेंगलोर में क्रैक करना है, पूरा हो गया। दूसरा नीड, मुझे ये कंपनी में जॉब करना है। तीसरा, मुझे ये ब्रांड का कार खरीदना है। चौथा मुझे इस देश में सर्विस करना है, 10 माइलस्टोन लिख के रखे थे। अगर 10 माइलस्टोन में से अगर एक भी माइलस्टोन उन्होंने लिख के रखा होता कि मुझे जीवन में खुश रहना है, तो सुसाइड नहीं करते। आप अपने बच्चों को सिखाइए, पहला बच्चा अपना मन है कि मुझे सदा खुश रहना है, अनकंडीशनल खुशी। अगर आपने अनकंडीशनल खुशी पा ली है तो आप एक स्लोगन मेरे साथ बोल सकते हैं, आग लगे बस्ती में मैं रहूंगा। हो सकता है फोन गिर गया, अभी अभी लिया था। अच्छा अभी लिया तो कोई बात नहीं, मैडम का लेके आया था। चाहे महंगाई हो या सस्ती में मैं रहूंगा, चाहे शहर में हो या बस्ती में। थोड़ा जोर से, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है। चाहे समुंदर हो या कश्ती में, यस, कुछ भी हो जाए, अगर मैं बस्ती में रहना सीख गया तो कुछ भी जो हुआ है ना सुधर जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। द वर्ल्ड, संसार परिवर्तनशील है। आपको लगता है हम यहीं पर बैठे हैं? आपको लगता है हम यहीं पर बैठे हैं कि एक घंटा हो गया यहीं पर बैठे हैं? गलत। आप अभी 6,700 माइल्स किलोमीटर आगे चल चुके हैं। द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन इन द स्पीड ऑफ 6,700 माइल्स पर आवर। आपको लगता है हम यहीं बैठे हैं? आप कई अंतरिक्ष में कई हजार किलोमीटर यात्रा करके आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी वही परेशानी लेके बैठे हैं। घर जाना है, वही यहां तो बढ़िया भोजन मिल रहा है, घर जाने के बाद वही खाना खाना पड़ेगा। तो कुछ एक प्रकार के मूड्स होते हैं जो हमें सदा खुश नहीं रहने देते। हम उस मूड्स को एनालाइज करेंगे। हम लोग सभी खुश होने के लिए एक बहुत सुंदर गीत गाएंगे। चलिए खड़े हो जाइए। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत सुंदर गीत है। सब कुछ ढूंढना गूगल में मिल जाएगा, केवल एक चीज को छोड़कर, वो है खुद को और खुदा को। अब इस गीत के द्वारा हम परमात्मा को याद करेंगे। ईश्वर पिता हमारे साथ है। मेरे साथ सभी एक साथ बोलेंगे, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो, जोरदार तालियों के साथ।
ये मत कहो
सभी का, आप सभी ने दो तीन दिन से यहाँ पर बहुत खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। एक मंत्र लेके जाएंगे, अगर कोई आपसे गलती से भी पूछ ले आप कैसे हो तो बड़े प्यार से बोलना बड़े आनंद में है। देखिए अच्छा क्या होता है, गुलाब जामुन देखा बहुत अच्छा, खाएंगे जब तो आनंद आएगा। गाड़ी पिताजी ने ला लिया, खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, परंतु पिताजी बोल रहे बेटा छूना नहीं, आनंद नहीं आएगा। जब बैठेंगे दो चक्कर लगाएंगे आनंद मिलेगा। तो आनंद इज हाईएस्ट डेफिनेशन ऑफ खुशी, कंडीशनल नहीं है। तो अगर कोई आपसे गलती से पूछे कैसे हो तो क्या बोलना, हाँ ये बहन जी अच्छा किए, और वहां पर एक बहन जी ऐसे कर बड़े आनंद में दिख नहीं रहा है, आपका दिल और दिमाग एक साथ काम नहीं कर रहा है। दिमाग करे क्यों करेंगे, ऐसे बड़े आनंद में करेंगे क्या, करके देखो सब कुछ आनंद हो जाएगा। कैसे हैं सर, बड़े आनंद में हैं। आप मार्केट गए हैं, थैली हाथ में पकड़े हैं, सामने मैडम पूछ ले कैसे हैं, थैली रखना आओ बताता हूँ, बोलना बोलना बड़े आनंद में हैं। अगले दिन पूछेगा ही नहीं कैसे करके, क्योंकि पेशेंट्स को पूछा जाता है कैसे हो, बीमार थे कैसे हो, ठीक ठाक है। अभी आप पेशेंट्स नहीं है, यहाँ से जाएंगे सब पेशेंट्स के साथ जाएंगे और अपने हर खेल में जीत प्राप्त करेंगे। ये खुशी और आशा के साथ साथ मैंने एक लाइन लिखा है कि सफलता की हर शिखर से आगाज हो ऐसा आवाज और कहां मिलेगा, खुद जीत आके विजयश्री का तिलक लगाए ऐसा अंदाज कहां मिलेगा। जवान तो संसार में लाखों है मेरे प्यारे दोस्तों, परंतु आप जैसे खिलाड़ी जवान संसार में और कहां मिलेगा। थैंक यू एंड ओम शांति।